तो आप लोगों का क्या इसमें ओपिनियन है, नेचर फ्यूचरिस्टिक है या फेरोशियस है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, डायलेमा में है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्लियर। हाँ, फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, फेरोशियस कौन कौन कहता है? फेरोशियस कौन कौन कहते हैं? कोई नहीं, सब फ्यूचरिस्टिक वाले हैं। तो लेकिन फ्यूचर कब आता है? जब पहले हम उसका रूप परिवर्तित होता हुआ देखते हैं, राइट? तो फेरोशियसनेस भी हम देखते हैं और फ्यूचर भी हम उसके आगे का देख पा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से फेरोशियस है, किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक है और उससे हमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए मैं आज के हमारे सभी पैनलिस्ट को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ रिस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके सरोज दीदी जी। आप डायरेक्टर हैं दिल्ली में द्वारका वसंत कुंज और उससे कनेक्टेड सेंटर्स के, और आप स्पार्क विंग के दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर रवि केधर, आप प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल के, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर वीवीएन सत्य प्रकाश जी, आप प्रोफेसर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर एंड डायरेक्टर हैं करियर डेवलपमेंट सेल MGITM हैदराबाद में, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुनीता चौधरी, आप साइंटिस्ट हैं क्रॉप फिजियोलॉजी लेबोरेटरी SACSA RPISD ICRISET पटनचेरू तेलंगाना से, आपको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आज इस विषय पे प्रकाश डालने आए और ये नेचर का एक बहुत सुंदर विजन हमें मेडिटेशन के रूप में बताने आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी भारती बहन जो कल्याण मुंबई से हैं, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे मध्य पहुँच रहे हैं और अभी जो सब कुछ देने वाला दाता है, नेचर भी जिसने एक गिफ्ट के रूप में हमें दी है, हम सबसे पहले अभी उसको भी आमंत्रित करेंगे कि वो आए और आज के इस सेशन को हमें वो प्रकाश दिलवाएं कि हम सब इसको बेहतर समझ सकें और हम सब एक आने वाले फ्यूचर को सामने रखकर उसके अनुसार अपनी नेचर को लेकर हम चलें। तो सभी हम दो मिनट ईश्वरीय याद में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप सब कह रहे थे कि ये जो प्रकृति है ये फ्यूचरिस्टिक है। जब हम नेचर की बात कर रहे थे तो बाहर की नेचर एक अपना बहुत सुंदर रूप दिखा रही है, क्योंकि इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण में जो ज्ञान सरोवर कैंपस का है इसमें हम सब हैं, और यहाँ पर ये इस समय प्रकृति का भी बरसना हमें क्या दिखा रहा है कि नेचर भी हमारे साथ है ना। आप सबके गुड वाइब्रेशंस जब नेचर को जा रहे हैं तो वो भी खुश हो रही है आप सबको देखकर। लेकिन इस समय हमारे एक पैनलिस्ट वो बारिश के कारण अपने वहाँ पर स्टक हो गए हैं, तो अभी आने वाले हैं, तो आप सबको बहुत अच्छा उनसे भी एनलाइटनमेंट मिलेगा। अभी वो 5 मिनट्स में हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। तो हम कहते ही हैं कि नेचर जो है उसने हमें क्या दिया है, ये जीवन जो है वो किससे बना है। तो नेचर गिव्स अस लाइफ एंड इट्स वेरी रिच एंड वाइब्रेंट वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। सो और आर्टिस्ट जितने भी आज तक हुए हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं चाहे पोएट्स हैं, सबने नेचर की बहुत सुंदर उपमाएं दी हैं, उसको बहुत सुंदर तरीके से अपने शब्दों में बताया, और मानव स्वभाव को भी और मानव के फीचर्स को भी उन्होंने नेचर के साथ जोड़ा है। तो इतनी ब्यूटीफुल ये नेचर है। तो फिर ये मेरा प्रश्न है आज के हमारे पैनलिस्ट से कि ये नेचर फिर फेरोशियस हम शब्द क्यों यूज करते हैं इसके लिए, ये फेरोशियस कैसे हो सकती है। और हम 3 प्रकार की नेचर की बात करते हैं, एक है इनर नेचर, एक है 5 एलिमेंट्स जिनकी हम आउटर नेचर की बात करते हैं, और एक है हमारा ये फिजिकल बॉडी। तो किस तरह से ये सब मिलकर कार्य करते हैं, हमारे पैनलिस्ट को मैं सबसे पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी। हमारे बीच में हैं डॉक्टर रवि कुमार धर जी, आप डायरेक्टर हैं जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल के, आप प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्टडीज एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मैं यदि आपकी अचीवमेंट्स को यदि गिनवाने लगूँ तो जो इनकी झोली इतनी भरी हुई है, ये सेशन तो क्या मैं समझती हूँ आज की पूरा रात्रि तक का समय हमारा निकल जाएगा। तो मैं कुछ उसमें से पॉइंट आउट करती हूँ कि आप एक एम्पैनल्ड हैं रिव्यूअर बाय द DST, आपने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के मिशन को सक्सेसफुली इनिशिएट किया, जो कि प्रिंसिपल से जिसमें हमारे सस्टेनेबल गोल्स के, और आपको ऑनररी हेडशिप ऑफ CEGR कमेटी ऑन जर्नलिज्म मीडिया स्टडीज एंड कम्युनिकेशन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली चैप्टर ऑफ CEGR। आपका अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव ही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एट वेरियस लेवल्स थ्रू स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एंड थॉट इनोवेशन इन डाइवर्स ह्यूमन इकोसिस्टम्स। और आपके जो की फोकस एरियाज हैं वो हैं प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया प्रोडक्शन, क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आपका मिशन है टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ नेचर्स इवोल्यूशन बाय हार्मोनाइजिंग द इंडिविजुअल एस्पिरेशन विद द इमेंट विल एंड बिकमिंग अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रुथ कॉन्शियसनेस। तो आपका स्पिरिचुअल बेंट भी है, आप एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं, और आपने नेचर के साथ अपने को बहुत अच्छे से अलाइन किया हुआ है। तो मैं डॉक्टर रविधर जी का पुनः वेलकम करती हूँ। हमारे बीच में आदरणीय सरोज दीदी जी हैं, आप डायरेक्टर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता चौधरी जी भी पहुँच गए हैं, आपका भी स्टेज पर अभिनंदन है। Thank you. आप सब ने सरोज दीदी का इंट्रोडक्शन कल भी सुना होगा, मैं फिर भी आप सबके सामने रिपीट करती हूँ कि आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, स्पार्क विंग दिल्ली को आप पूरा देखते हैं और एनसीआर को भी, साथ ही साथ आप वहाँ के सेवा केंद्र द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी और उनसे कनेक्टेड सेंटर्स के डायरेक्टर हैं। आपने नेचर के साथ बहुत क्लोजली काम किया हुआ है। आपने जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरियाज में, जिस समय वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं थी, आपने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। और दीदी जैसे बताते हैं कि कैसे हम अनंतनाग में चश्मे के नीचे हम अपने कोर्स कराते थे, आप एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं और आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट ट्रेनिंग शुरू करके आपने सबको एक दिशा दी है कि कैसे हम अपने कार्य में स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व करें तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा बन सकता है, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो सकता है। और ये इनकी तपस्या एक साल, दो साल, दस साल की नहीं, लेकिन 45 इयर्स की इनकी जर्नी है जिसके द्वारा ये सबको जीवन को आलोकित कर रहे हैं। तो ऐसे सरोज दीदी जी का भी हम पुनः पुनः वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता चौधरी जी हैं, आप क्रॉप साइंटिस्ट हैं और आपका बहुत ही रिनाउंड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, आपकी कमिटमेंट को सब मानते हैं और सलाम करते हैं। कौन सी फील्ड में? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन ट्रायल एंड एग्रीकल्चर। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज हमारे सामने कि जहाँ पे ड्राई लैंड्स हो रही हैं वहाँ पे हम कैसे सस्टेन करके एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते हैं। और आपकी स्पेशलाइजेशन है क्रॉप फिजियोलॉजी में एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑन इनोवेशन सिस्टम फॉर ड्राई लैंड RPISD एट द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड क्रॉप्स माना इक्री सेट में। तो हम आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर VVN सत्य प्रकाश भाई जी। आप 25 ईयर से राजयोगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन MGITM में, आप डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे करियर डेवलपमेंट सेल में, और आपको 25 ईयर्स उस लाइन के टीचिंग में भी हो गए हैं और 2 ईयर्स आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है। आपने अपनी PhD बिट्स पिलानी से की है और आपकी जो फील्ड थी वो है मेटल लैब, और आपके 20 जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और आपके 3 जो हैं वो पेटेंट्स हुए हैं। आपको DRDO का एक कॉन्सेप्ट था डेयर टू ड्रीम 2019 में, उसमें आपको स्पेशल अवार्ड मिला है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो भाई साहब ने एक बुक भी लिखी है सेल्फ काउंसलिंग जिसका नाम है ओपन हार्ट, और उसके ऑलमोस्ट 10,000 कॉपीज अब तक सेल हो चुकी हैं। तो हम डॉक्टर VVN सत्य प्रकाश भाई जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आप सबको एक नया विजन देने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में उस विजन को रखा, ऐसे हमारे भारत की भारतीय बहन जो मुंबई कल्याण सेवा केंद्र से हैं, आप 12 इयर्स के थे तभी से आपने राजयोगा की प्रैक्टिस शुरू की और 23 इयर्स से आप भी एक समर्पित जीवन को जी रहे हैं और अनेकों को एक विजन देकर उन्हें इस लायक बना रहे हैं कि वो अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकें। आपने PG डिप्लोमा किया है वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी में और MCOM किया है आपने कॉमर्स से। तो हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं, मैं सिस्टर से अनुरोध करूंगी कि सबको बैजेस और बुकेज के द्वारा भी वेलकम करें। हमारे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स आएंगे। हम सब कैसे वेलकम करेंगे? प्रकृति तो आप सबका कर रही है, पर उस प्रकृति के साथ हम सब अलाइंड हो जाएं। अभी तो बचता रहना चाहिए, अभी अभी आप सब रेस्ट करके आए हैं तो एनर्जी आप सबकी दिखनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि आप सब किसके लिए आए हैं? आप लोगों से मिलने के लिए ही तो आए हैं। तो जैसे ये आपका वेलकम कर रहे हैं, आप भी इनका वेलकम करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब प्रकृति इतनी सुंदर है, हमको सुख देने वाली है, इससे हमें इतनी कुछ प्राप्तियां होती हैं। आज व्यक्ति को कुछ चेंज चाहिए तो कहाँ जाता है? नेचर के पास ही जाके बैठता है। आप इस कैंपस में आए, यहाँ के वाइब्रेशन तो हैं ही, पर साथ साथ किस बात का सुख मिला? किस बात का सुख मिला? नेचर। सो नेचर हमें सुख कैसे दे रही है? कैसे सुख दे रही है? आप सबने कहा आपको सुख मिला, तो कैसे सुख दिया उसने आपको? हाँ जी, वातावरण सुंदर है। तो आप घर में गार्डन लगाएंगे तो वातावरण सुंदर नहीं होगा? हाँ जी, वहां आबू पर्वत नहीं है तो सिर्फ पर्वत पर जाएंगे तो सुंदरता मिलेगी? हाँ, नेचुरल है। ओके, और कोई? प्योरिटी। ओके, तो यदि नेचर प्योर है तो कहीं पर फ्लड्स हैं, कहीं पे ड्राउट्स हैं, ऐसा क्यों है? नेचर यहाँ पर ही प्योर क्यों है? तो इसका मतलब उसके साथ कुछ और भी पावर्स काम कर रही हैं। वो कौन कौन सी नेचर के साथ, कौन सी नेचर काम कर रही है, इन सब बातों को हम जानेंगे और हम नेचर को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरा सभी पैनलिस्ट से एक ओपन क्वेश्चन है कि ये नेचर जब सभी कह रहे हैं कि भाई इतनी खूबसूरत है, इतना सुख हमें देती है, देखते ही मन प्रसन्न हो गया, हम सब कुछ भूल गए, तो फिर ये फेरोशियस क्यों है? तो मैं सबसे पहले पूछूंगी डॉक्टर रविधर भाई जी से कि आप इसके ऊपर थोड़ा अपना प्रकाश डालें।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर टू शेयर माय थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट। वी जस्ट नाउ स्पोकन अबाउट the ferocity of nature. There are two aspects to it. First of all, why do we create a binary between man and nature? This binary dates back to the biblical theory of the creation or the fall of man, where it was said, and even before that, that this world has been created to serve the purposes of man. This is a purely, number one, androcentric point of view, where man is kept in the center and made the master of everything that is there in nature. This gives him an exploitative authority over nature, which science has done over the years. So when, if you look at nature, nature has an inbuilt mechanism whereby it always maintains its sustainability of its processes. But man in his greed disturbs that, disrupts that, and when he disrupts it, I'm deliberately using the word he, I'm not using she, because it has got nothing to do with woman. It's purely because the rise of rationality, the rise of science has been commensurate with the rise of a gender-centered point of view, wherein man has been privileged over woman. And by virtue of this power, he has disrupted the equilibrium or the harmony in nature. So when you disrupt the equilibrium in nature, then you expect nature to be kind to you, nature to be docile to you like a slave. Nature has its own consciousness. Nature has its own mechanism of survival. If you will drive it to the wall, if you will drive it to the corner, it will boomerang, it will hit back. So the ferocity lies not in nature. The ferocity lies in the over-exploitative nature of man. This is one aspect of the issue. The second aspect of the issue that I would like to address over here is the evolutionary aspect. Over the centuries, as evolution has happened, as per the theory of creative evolution, eugenics, we living organisms have evolved from the paramecium, the unicellular amoeba, to man. But if you look at this man, what is it that distinguishes man from the other creatures that are a part of nature? The distinction lies in the thinking process that man has been gifted with, number one, and complementary to it is his or her capability to analyze, that is, to use the intellectual faculty to discriminate between what is right and what is wrong. That is what distinguishes man from the rest of the creatures who are a part of nature. And I would always like to treat man as a part of nature, not as somebody who is outside. Man is an animal, but an animal with a difference. The difference lies that he has been gifted with the human mind, with the intellect, the capability to accelerate this process of evolution. In the process of evolution, there have been cycles of time. We have the theory of the yugas. We have also the theory that after Kaliyuga you have the Satyuga. Basically, why are we talking of these yugas? Why we are talking about these yugas is that man has to evolve into something, something who could anchor that divine consciousness within himself. That is the process of divinization of human beings. Now, when that becomes the goal of evolution, because if man continues to operate with sense mind consciousness, he gets trapped in the bubble of dualistic consciousness, of which one of the byproducts is this binary between man and nature. But when he or she liberates himself or herself from the bubble of sense mind consciousness and dualistic approach towards life, he or she places himself in, I'll again make a reference to the Bible, to the stage which is referred to as the prelapsarian state of reality. That is the state which existed before the fall of Adam and Eve as a result of the psychological, the fall in consciousness that they suffered when they partook of the fruit of the knowledge of good and evil. Again, distorted by various Christian theologians when they interpret this theory. So there are two aspects. So the second aspect emphasizes change. And that is why we are in a phenomenal world. In a phenomenal world, when there will be change, something will die out, and something, that is what Tennyson says, the old order changeth, yielding place to new. So when something will die out, it will look, how will it die out? It's not necessary, as Shri Krishna says in the Bhagavad Gita, yada yada dharmasya, whenever there will be a lot of evil, I come as an intervention. Intervention is not necessarily always in the form of an avatar. It could also happen in the form of natural calamities. In the form of different, not just natural calamities, these could be also man-made calamities. So in such a situation, what becomes important is the empowerment of the individual. How can the individual empower himself or herself? Not by the industrialization of food. In our preoccupation with feeding millions of mouths, and also the greed of eating. See, eating has also become a pastime. It's no longer a buy. It doesn't, as of now, it doesn't only satisfy a biological or a physiological function. It has become a pastime. You don't have anything, so eat a burger. You don't have anything else to do, okay, let's eat this. So you're over-consuming then what your body requires. In the process, you are creating excessive pressure on agriculture, and the agricultural scientist says, okay, I have the recipe. So they create, what happens is the industrialization of food. The industrialization of food has led to a kind of food which, I don't know whether it is politically correct to say so, a kind of food which is not fit for human consumption. There's a village near Bathinda in Punjab from Bathinda, there's a train which goes, I think, to some city, and it is called cancer train. Because most of the patients come from Bathinda side, and why? Because so much of chemical fertilizers, chemical inputs have been put into the food, that food has lost that, I think that it has lost the claim to be called food. So the organicity of food is gone, and as a result, we have, what we are doing is, we are creating a system wherein you're eating food which is not fit for human consumption, you're falling sick, and it is not just now food. You're eating processed food, industrialized food. The same corporation is selling you food as a value-added product, and the same corporation also has a hospital. So what are they doing? They're selling you medicine. They're telling you, first you get sick, then I'll sell you medicine, then I'll charge you for that. And it has also a bank. It will give you the loan. So what is happening? You're falling into a trap. So that, I feel, are the different aspects of the problem, and we need to find an answer to that.
Basically, the human greed creates the nature of ferocious, because our thinking process has been fallen down, because the consciousness is fallen down, so our thinking process, our capability to analyze and this power to discriminate between right and wrong is also fallen down, and therefore we are just running behind the greed, and we are doing the overconsumption for everything, and it's a burden on the economically, agriculturally, therefore everyone is suffering, right? So अभी मैं आदरणीय सरोज दीदी जी से पूछूं, अभी मैं आदरणीय सरोज दीदी जी से पूछूंगी कि आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि नेचर कैसे फेरोशियस है या फ्यूचरिस्टिक है. उसके पहले एक मिनट मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग थोड़ा आगे आ जाएं, सभी आगे आ जाएं. Thank you.
ओम शांति. सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, मुझे ये कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि फिरोशियस क्यों है आज की डेट में और नेचर क्या है. ये जरूरी जानना है कि हम नेचर, व्हाट इज नेचर. वास्तव में नेचर का मतलब है जो चीज मेरी है, जो चीज मुझे चाहिए वह मेरी नेचर है. जो चीज मुझे चाहिए, अब आप सोचिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, शांति चाहिए या क्रोध चाहिए, क्या चाहिए बताएं, प्यार चाहिए या नफरत चाहिए, प्यार चाहिए. तो हम सोचते हैं हमको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और जिसके लिए हम लोग बाह्य साधनों में ढूंढ रहे हैं. तो जो मेरी ओरिजिनल नेचर है वो मुझे चाहिए. जैसे ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, तो पांचों ही तत्व इस शरीर को चाहिए. अगर किसी एक तत्व का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, वी फील अनकंफर्टेबल, हम बहुत ज्यादा अनइजी फील करते हैं जब तक कि वो उसकी पूर्ति ना हो जाए. ऑक्सीजन चाहिए तो उसकी जगह दूसरी गैस प्रोवाइड करेंगे तो नहीं चलेगा. तो जो मेरी चीज है, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 80% ऑफ दिस बॉडी कंटेन्स वाटर, तो हमें अगर बहुत तेज प्यास लगी है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट ओनली प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि वो मेरी चीज है, मुझे चाहिए। ऐसे ही जो मेरी चीज है वही मुझे चाहिए। तो आप अपने आप से एकांत में जरूर चिंतन करें कि आपको क्या क्या चाहिए। बेशक आप कुछ भी कर रहे हैं उसको पाने के लिए, बाह्य जगत का में ट्रेवल कर रहे हैं और बाह्य जगत की चीजों को लेकर के आप सुख पाना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, लेकिन क्या ये बाह्य जगत में ढूंढने से आज दिन तक हमें प्राप्त हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं हूं, जिसको कहते हैं ह्यूमन बीइंग, का मतलब है ह्यूमन शरीर के लिए आया है, ह्यूमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मिट्टी, और बीइंग का मतलब सोल। ये शरीर और आत्मा शुरू से दोनों का साथ चला रहा है, जिसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति। पुरुष आत्मा के लिए आया है, प्रकृति शरीर के लिए आया है। तो जब तक प्रकृति का शरीर पर अधिकार, पुरुष का प्रकृति पर अधिकार था, ये धरती स्वर्ग कहलाती थी। और धीरे धीरे पुरुष प्रकृति के अधिकार में आ गया तो धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति, उसकी शक्ति कमजोर होती चली गई। एंड वी आर ट्रैप्ड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। और फिजिकल बॉडी के कॉन्शियसनेस में आने से, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया बहुत अच्छा, ग्रीड, केवल ग्रीड तो एक चीज है, जितने भी डिसवैल्यूज हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, एनिमोसिटी, ये सारी जो बातें हैं, जब हमारे अंदर आ गई तो ये नेचर सीरियसियस हो गई। तो कारण क्या रहा? द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, जिसने इन विकारों को जन्म दिया और उसके कारण से मेरी अंदर की नेचर डिस्टर्ब हो गई। मैं अपनी असली नेचर को भूल गई कि मैं आई एम अ नॉलेजफुल सोल, अ प्योर सोल, अ पीसफुल सोल, अ लवफुल सोल, अ ब्लिसफुल सोल, हैप्पी सोल एंड पावरफुल सोल। दीज आर द सेवन ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेल्फ। दिस इज माई ओरिजिनल नेचर। मेरी वास्तविक नेचर यही है। अगर मैं अपनी नेचर को बरकरार रखते हुए कार्य क्षेत्र पर व्यवहार में आती हूं, तो हमारी इस इंटरनल नेचर का एक्सटर्नल नेचर से बड़ा गहरा रिश्ता है। हमारे प्योर वाइब्स होंगे, वाइब्रेशंस प्योर एंड पावरफुल होंगे, जिससे बाहर की प्रकृति भी फिरोशियस की बजाय क्या हो जाएगी, है फ्यूचरिस्टिक हो जाएगी। मतलब अभी विनाश का कारण है, फिर कल्याण का कारण बन जाएगी। बाद में इसके बारे में फिर आते हैं, लेकिन अब मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। मुझे अपने अंदर की नेचर से ठीक करना है और स्वयं का परिवर्तन करके नेचर में पॉजिटिव चेंज लाना है, ताकि हम इसको फ्यूचरिस्टिक बना सकें। ओम शांति।
सो अभी मैं, थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया और कुछ कुछ हमारे सिमिलैरिटीज की, जो हमें सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए। और वो सेल्फ एम्पावरमेंट क्या है? टू रियलाइज योर रियल सेल्फ, जो आपके अपने क्वालिटीज हैं, क्योंकि नेचर मीन्स स्व का भाव। तो हमारा जो स्व का गुण है, उसमें जब हम हमेशा रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, तो हमारी नेचर तो सुंदर बनेगी, लेकिन उसके साथ जो वाइब्रेशंस हम इस बॉडी को दे रहे हैं या प्रकृति में फैल रहे हैं, तो ये बॉडी और प्रकृति ये दोनों भी बहुत सुंदर बन जाएंगे। तो नेचर फेरोशियस भी हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस से बनी, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस से वो फ्यूचरिस्टिक बन जाएगी। थैंक यू। और अभी डॉक्टर सुनीता वेन से हम पूछते हैं।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड आई रियली थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कीप माय पॉइंट्स हियर। मेरा एक मानना है कि नेचर ऑलवेज चेंज, इट्स चेंजिंग। हमने लास्ट 100 इयर्स का डाटा लिया और इट्स चेंज, बट द नाउ चेंज इज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले जो चेंजेस थे वो नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए करती थी, अब जो चेंजेस हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के हिसाब से है। पहले जो चेंजेस थे हम उसको, हमारा लाइफ टाइम शॉर्ट है कि हम उसको देख पाएं, चेंजेस बहुत स्लो होते थे। अब क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको बहुत कीनली देख पा रहे हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत रिग्रेस वे में हुआ है, इसलिए नेचर का चेंजेस भी बहुत रिग्रेस हो रहा है, और जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज इनिशियली एक कॉन्सेप्ट था जिसपे बहुत सारे लोगों ने बिलीव भी नहीं किया। इट टुक 10 इयर्स टू मेक पीपल रियलाइज दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल। क्लाइमेट चेंज के अगर आप पैरामीटर्स देखें तो उसमें सिर्फ 1.5 डिग्री चेंजेस होगा आईपीसीसी के हिसाब से। 1.5 डिग्री टेम्परेचर इज ओनली चेंजिंग। दूसरा है कि अगर रेन इज प्रिडिक्टेड टू बी हायर, रेन ज्यादा होगा। और तीसरा है कि CO2 लेवल बढ़ेगा। CO2 लेवल बढ़ेगा तो हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था हायर CO2 लेवल पे, और उस पर हमें प्लांट का बायोमास ज्यादा मिला था, मतलब प्लांट ज्यादा बड़े हो रहे थे। फिर हम क्यों वरीड हैं? किसी के पास इसका एक छोटा आंसर है या कोई किसी तरह का? शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम बहुत क्लोजली इसको स्टडी करते हैं। तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि हम वरीड हैं बिकॉज इसका इफेक्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में नहीं है। रेन बढ़ेगा लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। वेटर एरिया ज़्यादा वेट हो जाएंगे, ड्राई एरिया ज़्यादा ड्रायर हो जाएंगे। रेन बढ़ेगा वो उसमें ड्राई स्पेल ज़्यादा होगा, एक बार में बहुत सारा रेन आएगा जिसको हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो सॉइल को डिग्रेड करेगा और फिर लंबा ड्राई पीरियड रहेगा जो हमारे क्रॉप एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। CO2 लेवल बढ़ेगा जिसमें क्रॉप प्लांट्स का बायोमास बढ़ेगा, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं करेगा यील्ड में, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। तो और 1.5 डिग्री से सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ एरिया जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज होने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हम पास्ट को स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये वाकई में वरी होने क्या है, और हमारा वरी का कारण है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। वी आर वेरी मच नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सो वी हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस। लिटिल बिट और थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगी कि बहुत सालों पहले लॉ ऑफ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आया था जो इक्विलिब्रियम का बात करता था। किसी भी जेनेटिक वेरिएशन ऑफ एनी प्लेस इज इन इक्विलिब्रियम। नेचर कीप इट वेरी इक्विलिब्रियम अंटिल देर इज अ इंटरफेरेंस। देर इज अ नेचुरल म्यूटेशन और नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये हार्डी वही हैं जो रामानुजन जी के मेंटर थे, उन्होंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था जिससे वर्ल्ड ने उनके काम को रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट उनके सारे इक्वेशंस को उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा जिसको आज तक साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं। तो वेनबर्ग का ये प्रिंसिपल काफ़ी मायने रखता है हमारे लिए कि हम 2050 में पॉपुलेशन डबल होने वाला है और हाउ वी आर गोइंग टू फीड द वर्ल्ड। फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, लैंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जा रहा है कंस्ट्रक्शन में, और हमारे ऊपर प्रेशर है कि वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल। तो इसको कैसे करना है ये एक बड़ा चैलेंज है, और इस पर हम और थोड़ा बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अमेजिंग हैं। मे बी सेकेंड राउंड में मैं आऊँगी, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।
थैंक यू. सो नेचर में जब ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो ही नेचर जो है वो क्या हो रही है, फेरोशियस. अदरवाइज नेचर के पास वो पावर है कि वो खुद को बैलेंस कर सके. दिस इज द मैसेज वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दी डॉक्टर सुनीता बहन. नाउ आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर वीवी एंड सत्य प्रकाश भाई जी कि आप भी अपने व्यूज इस पर रखें.
ओम शांति. सो रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स एंड ऑडियंस, इनफैक्ट दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग topic, because it coincides with whatever we are discussing right now. So is nature ferocious? I'll put it in a more positive sense. Like there is a proverb in English says that storms bring lot of pearls and gems. जब भी समुद्र में तूफान होती है तो वो तूफान क्या करती है, पूरा जो नीचे से खोद के सारे माल जो है ना वो सीशोर पे फेंक देती है, ताकि आपको बहुत सारे जेम्स या पर्ल्स मिल सकेंगे. वैसे जब भी आप कोई ना कोई ऐसी नेचर की जो फेरोशियस काम होती है उसमें से भी आप बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे. और मुख्य तौर पर ये तो बाहर की आउटर नेचर के बारे में जो हम अभी तक जानकारी है, परंतु जो इनर नेचर जो है यानी अपने अंदर जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस है जिससे हमको गुजरना पड़ता है, बहुत डेलिकेट टाइम्स, आप सोचिए तब जब वो पास हो जाती है वो सिचुएशन, व्हेन वी क्रॉस वी विल कम टू नो दैट देर आर सर्टन हिडन टैलेंट्स और स्पेशलिटीज विद इन अस विच वी आर नॉट एक्सप्लोर्ड एनी टाइम अनलेस दैट सिचुएशन हैज कम. जब वो सिचुएशन आती है तब भी अब हमको पता चलता है कि अरे ये सारे गुण है, ये सारे विशेषताएं हैं, ये जो परिस्थिति है वो आने के कारण ही मुझे मेरे अंदर जो है ना क्षमता वो बाहर निकली है. तो इस तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेचर इज लाइक ए चेंजिंग, ए ट्रांसफॉर्मेशन. यू कैन नॉट से दैट इट इज फेरोशियस नॉर समथिंग, इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू एन इनऑर्डर स्टेट. लाइक थर्मोडायनेमिक्स में जो हमको सिखाया जाता है एंट्रोपी, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरलीनेस. यानी जब जब आप अभी फिलहाल में अभी परिस्थिति आप देखेंगे तो वर्ल्ड में आपको डिसऑर्डर नजर आती है बहुत सारा. एवरीवेयर देर इज अ डिसऑर्डर इन पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर यू फाइंड ए लॉट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस. बट वेन यू understand the cyclic nature of nature itself, you'll find that from an order state it has become to disorder, again from disorderness to it comes to order state. Parantu order state se disorder hone tak ye sara manushya ka prakriya hai, jaise ki didi bata rahi thi ki hamare andar jo वीकनेस से नेगेटिविटी है उससे मनुष्य का पतन हुआ, ताकि ऑर्डर स्टेट से इनऑर्डर स्टेट तक आ गया. अभी जब इनऑर्डर स्टेट से फिर ऑर्डर स्टेट को आना है, एक्चुअली दिस इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंट्रोपी. विद इन ए सिस्टम देर शुड बी समथिंग विच हैज टू बी इंजेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. यहां पे आती है कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा का या गॉड, हु विल इंटरवीन एंड गिव्स ए न्यू input new energy into the system so that he brings back this disorder state to the order state. So in that context I say that as such nature is not ferocious, but it is more like a transformation.
So we can say when we say nature is ferocious means it is throwing our the whole negativity outside so that we can analyze the real potential, the real jewels within or the outside also from the nature. So thank you Satya Prakash Bhai Ji, aapne bahut sundar hame explain kiya. So nature ka, Dr. Dhar Bhai, aap ek baat keh rahe the ki nature mein jo hai apne aap se balance karte ek equilibrium hai. तो हम नेचर के लिए कहते भी हैं कि नेचर इट्सेल्फ इज द बेस्ट फिजिशियन. हाउ कैन अ नेचर बी अ फिजिशियन? वी आर सो ऑन डेली बेसिस गोइंग टू द डॉक्टर्स एंड ऑल, एज यू वर सेइंग कि भटिंडा से एक ट्रेन कैंसर पेशेंट्स की चलती है ड्यू टू केमिकल क्रॉप ऑफ देयर. तो कैसे नेचर फिजिशियन का रोल प्ले करती है?
As I was saying, based on my own personal experience, I can tell you, in 2019, COVID-19 struck. And I will connect with what Didi also said. I fell sick. Being spiritually minded, and face to face with a challenge which threatened my existence because there was nothing available out there in the market. Because the natural tendency of a man is to look for a support system. We always look out for somebody to help us. That is the natural human tendency. We never look within. So when this challenge came and it threatened the very base of my existence, I went into meditation. I'm narrating a personal experience. When I went into meditation, I lost my body consciousness, went into the limitless space, and there, surprisingly, I saw darkness in its physical form, all around, enveloping me, everywhere, darkness. Darkness, I have not seen that kind of darkness with my naked eyes. It was pitch black. That was the kind of darkness. When I came out, I realized that this is the kind of darkness that is within me. And as I continued, my meditations, and that power above became active because मैं उसकी शरण में गया. जब मैं उसकी शरण में गया, उसने अपना शक्ति ने आदि शक्ति ने अपना कार्य शुरू कर दिया. और जब उसने कार्य शुरू किया, believe me, I could feel कि कोई चाकू से मुझे मेरी आंखों में कुरेद रहा है. मुझे दर्द होता था आंखों में. कोई अंधकार को, जैसे कश्मीर में जब अखरोट जब होता है ना, अखरोट की गिरी निकालते हैं, कच्चे अखरोट की जो मार्केट में आते हैं, वो तो सूखा अखरोट होता है, कच्ची गिरी वाला, उसको ऐसे निकालते हैं चाकू से. ठीक उसी प्रकार से मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से डार्कनेस को, और धीरे धीरे वो डार्कनेस कम होने लगी. मगर उसके साथ एक एसेंशियल प्रोसेस विच आई वॉन्ट टू मैंशन टू यू एंड विच बियर्स रेफरेंस टू वॉट Ekta Behan has asked me about, that was the change that I made in my food. Ahar mein, jo maine change laya. I was a non-vegetarian, number one. I used to eat left, right and center. Zomato, Swiggy's, hail to them. Hats off to them. Jab thoda sa man wo disturb hua, boredom hua, bachon ne kaha, uncle ya bete ne kaha, papa ye kha lete hain, order kar diya, kha liya. Subah sham. My son came around this time from Switzerland. मैं भारत में रह के इस ज्ञान से वंचित था, वो मुझे स्विट्जरलैंड से ये ज्ञान लेकर आया और उसने मुझे ज्ञान दिया सात्विक लाइफस्टाइल का. सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन गया, प्याज लहसुन गया, चाय भी गई, सॉरी टू से बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट. He asked me not to take tea as well. Stimulant to be. No stimulation to the body. The body has its own stimulants, natural stimulants. You do not need any external stimulant. Bhojan jo karna hai, uski vidhi badal gayi. Aur usne mujhe kaha ki bhojan jo khao, wo nature se minimum processing ho. Jo ye processed foods, jiske upar ye पैसे कमा रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं. मुझे उस दिन ज्ञात हुआ, आप अपने दुश्मन के लिए भी जो नहीं सोचोगे, सपने में भी नहीं सोचोगे, वो आप अपने शरीर के साथ करते हो. मैं नमन करता हूं इस शरीर को कि इतने जुल्म इसके ऊपर हम ढाते हैं, तब भी ये हमें ढोता है. मेरा वजन 106 केजी था, 103 केजी था. टुडे आई एम 66. मैं तीन बार तो खाना खाता था. हम ना भारतीय रहे, ना हम पश्चिमी सिस्टम में रहे. ब्रेकफास्ट हुआ तो पंजाबी स्टाइल, पराठे शराठे अच्छी तरीके से खाए. लंच हुआ वो भी डिनर तो पार्टी हो गई, क्योंकि बच्चे घर पे आएंगे, अंकल हो गए, वो हो गए, तो पार्टी कर ली. हैवी डिनर रात के 11-11 बजे तक. ये बेचारा पेट कैसे सहता है. जब ये मैंने सारा रूपांतरण किया, आहार में किया, अपने शरीर को एक जीने का, सांस लेने का मौका दिया, अपने प्राण को, जो मेरे अंदर प्राण शक्ति है, उसको मैंने फ्री किया. जैसे अपने घरों में हम मेड से, आम तौर से मैंने देखा है, बैठने नहीं देते, कई जगहों पे मैंने देखा है. पंजाबी में कहते हैं, तू हुन तेरा काम खत्म हो गया, ऐसे ऐ भी कर ले, फिर बह गई, हुन ऐ भी कर ले. सिमिलरली हम इस पेट में जो प्राणिक शक्ति है, उसको बेचारे को खत्म कर देते हैं. वो कब रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स करेगी. शाम को जो भोजन खाया आपने, वो पड़ा रहा, तो एक तो प्रोसेस्ड फूड, फिर जो फूड आप खा रहे हो वो भी अडल्ट्रेटेड है, क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, केमिकल इनपुट्स हैं. ये सब मैंने धीरे धीरे कम किया. आज की डेट में पिछले 3 साल से मैं थोड़ा सा वेदर चेंज होता था, आई वुड पॉप अ पिल. मुझे ब्लड प्रेशर हो गया था, अब आगे पता नहीं कितनी और बीमारियां आ जाती. आज की डेट में पिछले 3 साल से मैंने एक टैबलेट नहीं खाई, ना मुझे ठंड लगती है, ना मुझे गर्मी लगती है, ना मैं एसी यूज करता हूं, मैं बेड पे भी नहीं सोता, मैं फर्श पे सोता हूं, जितना नेचुरल हो जाओगे, नेचर के करीब जितना जाओगे, नेचर में जितना आप प्रोसेसिंग करोगे उतना आप, जितना आप नेचर से दूर करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, आप दूर हो जाओगे। जितना प्रोसेस्ड फूड खाओगे, आपका शरीर जो है उसके लिए बना नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ यू। आई एम स्पीकिंग ऑफ नेचर विद अ कैपिटल एन, नॉट द अदर नेचर विच इज विद इन यू। आई विल कम टू दैट सम अदर टाइम। जो प्रकृति के भाग बनोगे, प्रकृति में इतने अच्छे, नेचर हैज इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ रेस्टोरिंग द बैलेंस, इसीलिए आप बीमार पड़ते हो। तो ये सब चेंजेस करने से, मैंने प्राकृतिक सब कुछ भोजन किया, मैं दिन में एक बार खाना खाता हूं, अब 24 घंटे में सिर्फ एक बार कुक्ड फूड खाता हूं, दूसरा भोजन मेरा सिर्फ फ्रूट होता है। आप कार्बोहाइड्रेट्स इतने खा रहे हो, ग्रेन्स इतने खा रहे हो, इतना खाना खा रहे हो, कहां कहां से प्रोड्यूस करेगा फार्मर बेचारा। उसके कारण आप फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हो, जो हीट सिंक्स थे आपके साउथ अमेरिका में, अमेजॉन्स, वो डिप्लीट हो रहे हैं। फिर ऊपर से मीट प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली यूरोप में सारे फॉरेस्ट कवर जो हीट सिंक का काम करता था वो खत्म हो गया। आपका रेड मैप है पूरा, आप देखो यूरोप का और अमेरिका का, और इंडिया अभी भी बचा हुआ है। इसलिए कोविड में उतना प्रकोप इधर नहीं हुआ भारत में, क्योंकि अभी भी आप वेजिटेरियन हो इधर, बहुत सारे लोग भारत में। यूरोप में जाइए, वहां तो खाते ही सुबह शाम मांस है। हमने उनकी देखा देखी KFC, बर्गर, मैकडॉनल्ड, और इसको स्टेटस सिंबल बना दिया। कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग प्रोसेस्ड। आप जूस पीते हो, वो जूस में कुछ भी नहीं है, लिखा होता है एप्पल जूस, मैंगो फ्रूटी, उसमें मैंगो ही नहीं है। इट इज क्रिमिनल, नोबडी हैज द गट्स टू रेज अ वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट। आप कभी उसको पढ़ना, मेरे बेटे ने पढ़ के सुनाया, पापा देखो इस पे कहीं मैंगो नहीं है, और कह रहा है ट्रू, ऊपर कह रहा है ओरिजिनल मैंगो कॉन्सेंट्रेट, नीचे कुछ नहीं दे रहा, इनपुट्स में जहां पे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वहां मैंगो है ही नहीं। ये चीज है, जब आप इस तरह का भोजन खाओगे, ऐसा खाओगे, तो बीमार तो पड़ोगे। तो अगर आप सशक्त हो जाते हो, फिर बीमारियां कोई भी आए, जैसे कोविड में ये इश्यू उठा था दैट इट वॉज अ मैन मेड, there were theories, I'm not going into whether the theories were correct or incorrect, but whatever the challenge, nature has created such a beautiful body, nature or God has given us such a beautiful body that this body has the capability to fight any sickness, any disease. हमारे ग्रंथों में लिखा है, रामायण महाभारत में हम कहते हैं 200 साल, 3000, 1000 साल जीते थे। कैसे जीते थे? क्योंकि उनका भोजन का तरीका अलग था, उनका योग करते थे, ध्यान करते थे ना। आपके प्रकृति में तीन चीजें हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तीनों का आप ध्यान रखते नहीं तो कहां से क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।
बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि तीन ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने आपके मन के डार्कनेस को दूर किया, उस लोनलीनेस को बताया कि ये क्यों है जो आपने कोविड टाइम में एक्सपीरियंस की, और जिससे आपको लगा कि इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ एंड इन द मिडस्ट ऑफ डेथ वी आर इन लाइफ। और ये जब आपको एक्सपीरियंस हुआ तो आपने जो चेंज लाया कि वो नेचर के साथ अपने को अलाइन किया। तो जो फाइव एलिमेंट्स से ये बॉडी बनी है, उन फाइव एलिमेंट्स को फाइव एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट किया तो इस बॉडी की भी प्रकृति जो है वो शुद्ध बनी, क्योंकि हमने सात्विक आहार को यूज़ किया जो कि हमें नेचर से मिल रहा था। तो नेचर हम सबको हर तरह से हील करती है, इसलिए वो बेस्ट फिजिशियन कहलाती है। दीदी, आप बात कर रहे थे कि ये नेचर कैसे फ्यूचर बनाने में हमें कोऑपरेट करती है, कैसे हेल्प करती है, तो आप इसके बारे में कुछ प्रकाश दें।
नेचर कैसे फ्यूचर बनाने में हमें हेल्प करती है, सिर्फ फ्यूचर नहीं लेकिन श्रेष्ठ फ्यूचर, बेहतर संसार की जो हम कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सारी उम्र हम एक गलती करते रहे, धूल पड़ी थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। बाह्य स्तर पे हमने काफी चीजों को ठीक करने की कोशिश की, इसमें सारे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है वो कहती है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो जो हम नेचर की बात कर रहे थे, ओरिजिनल नेचर, ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर की बात है, स्व का भाव, और इसमें एक मन है, बुद्धि है और संस्कार है। मन जो है वो सोचने की शक्ति का नाम है, जो विचार आते हैं मन में आते हैं, और बुद्धि डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, और डिसीजंस लेने के बाद जब हम कर्म करते हैं, कर्म को रिपीट करने से हमारे संस्कार बनते हैं। अब हम अगर अच्छे संस्कार बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म को रिपीट करें, और अगर हम अच्छे संस्कार नहीं बनाना चाहते तो हम जो गलत करते आ रहे हैं उसे रिपीट करते रहें। अब आप बेहतर संसार की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले मुझे अपने संस्कारों का परिवर्तन बहुत जरूरी है। और जैसे अभी डॉक्टर धर सुना रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, इन्होंने कहा कि आहार शुद्धि पर मैंने ध्यान दिया। यूं देखा जाए तो हरेक के अंदर आजकल अवेयरनेस आ गई है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे नेचर के साथ हम अलाइन करके चले, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं, उसका आधार है आत्मविश्वास, आत्मसंयम। आपकी बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या हार्मफुल है, आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि मुझे इस जीवन में रह के समाज की कुछ सेवा करनी है, मुझे यूं ही नहीं चले जाना, तो उसके लिए मुझे अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। और आप में जरूर अध्यात्म का समावेश है, जो आपने सोचा कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे अपने भोजन को चेंज करना है। सभी नहीं कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सब नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए, जब हमारे अंदर ये अच्छे थॉट्स आते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव इनपुट लेते रहते हैं, तो हमारे अंदर थॉट्स भी चेंज होते हैं, बुद्धि डिवाइन बन जाती है, डिवाइन इंटेलेक्ट राइट डिसीजंस लेती है, और सही कर्म होते हैं और सही संस्कार बनते हैं। अभी तक क्या था कि हम लोग बिना कुछ सोचे यूं ही बोल देते थे, और हम ये कहते थे व्हाट कैन आई डू, आई एम हेल्पलेस, दिस इज माई नेचर, हमारे मुंह से निकल जाता था। लेकिन अब हमें समझ में आ गई कि सोचने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले हम सोचें कि क्या ये स्वयं और अन्य आत्माओं के लिए बेनिफिशियल है। है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे भाई साहब ने बताया लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रोसेस से गुजरते हैं, गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन स्टेज में हम आ गए हैं, अब हमें फिर से वापस उस गोल्डन स्टेज में जाना है, सत्व प्रधान स्टेज। उसके लिए सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा से जब हम अपने को कनेक्ट कर लेते हैं, लॉ ऑफ नेगेंट्रोपी, रिकनेक्ट योर सेल्फ विद द सुप्रीम बीइंग, तो आपके अंदर क्या है, जो आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए थे मन से, वचन से, कर्म से, वो रीऑर्गेनाइज्ड होना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रीचार्जिंग। तो अब हम मेडिटेशन में अपने को रीचार्ज करते हैं और उससे हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। और मैं केवल सार में एक बात कहना चाहूंगी, एक बात का पहरा हम जरूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी हम कर्म करें, अपने आसन को नहीं छोड़ें, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ें। कुर्सी का ही तो खेल है आजकल, कोई अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है, पावर है ना कुर्सी में। इसलिए मुझ आत्मा की जो सीट है, आई रिजाइड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड, मैं अपने आसन पर स्थित होकर के हर कर्म करूं। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, इन पांचों गुणों को, इन पांच सात गुणों को अपने कर्म से रिफ्लेक्ट करें। पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी, नॉलेज। तो आप जहां देखें कि आप इससे आउट हो रहे हैं, वापस अपने आईने को, अपने फेस को ठीक कर लें। फिर कहीं आप डीरेल हो रहे हैं, वापस से आ जाएं। तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बहुत क्लियर होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, यानी आप एनर्जी को पावर में कैसे चेंज कर सकते हैं। साइंस का क्या एग्जांपल है कि सूर्य के पास बहुत एनर्जी है, लेकिन जब आप एक लेंस के द्वारा, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, किसी भी पेपर पर एकत्रित करके किरणें गिराते हैं तो पेपर झुलस जाता है। इसका मतलब एनर्जी को उन्होंने पावर में चेंज किया। तो सोल भी एक एनर्जी है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। कईयों ने इस पावर को डिस्ट्रक्टिव काम में लगाया तो आज विध्वंसकारी बन गए, जिन्होंने इस पावर को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया वो आज बहुत ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंच गए। बहुत सारी बीमारियों का निदान आज किसी से हो रहा है, एटम एनर्जी से, और एटम एनर्जी से एटम बॉम्ब भी बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इस सोल पावर को एनर्जी में, एनर्जी को पावर में ट्रांसलेट करें, तो आप देखेंगे ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके आप शक्ति अंदर में ला सकते हैं, जिस शक्ति से आपके पुराने संस्कार टोटली भस्म हो जाएंगे और नए संस्कार आपके कैरेक्टर में आ जाएंगे। वो है, जब हमने, हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो प्रकृति भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सतयुग में गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, प्रकृति आपके चरणों की दासी थी, कुबेर का खजाना था, देवता पुष्पक विमानों में उड़ते थे। इतनी प्रॉस्पेरिटी होते भी प्रकृति के पांच तत्व ऑर्डर में थे, क्योंकि मनुष्य ऑर्डर में था। तो जब हम डिसिप्लिन में आ गए तो नेचर भी डिसिप्लिन में आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मानव प्रकृति की रचना है, एक हिस्सा है, लेकिन मानव प्रकृति का राजा है, राजा है। जैसा मैं आत्मा पावरफुल बनूंगी, मुझे देख करके प्रकृति भी पावरफुल हो जाएगी हमारे वाइब्रेशन से।
आपने बहुत सुंदर, आपने इसकी विधि हम सबके सामने रखी कि कैसे मेडिटेशन से के द्वारा हम जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको हम इवैल्यूएशन में चेंज करके इस नेचर को हम अपना मददगार बना सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि सूर्य की किरणें हैं, ये सब हैं, तो इनसे हम एनर्जी को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता बहन जो कि क्रॉप साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि जैसे हर क्रॉप का एक अपना गुण होता है, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो अपने आप काम करती है या इसमें ह्यूमन का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसका भी रोल कुछ वो प्ले होता है कि जिससे ये क्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकें और इनके अंदर एक हम जो फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं वो हम देख सकें, ऐसा कोई आपका अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें?
या प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग एंड दे डू रेस्पॉन्ड टू स्पिरिचुअल पावर्स. I have personal two experiences which I would like to share. So, I was doing my postdoc in North Carolina State University and my experiments were failing one by one. And I reached to my mentor and I said, see, I am taking care of everything. Jo bhi usko chahiye, main de rahi hoon, par mere plants achhe grow nahi ho rahe hain, jispe main experiment kar sakun. To unhone ek hi line bola, did you talk to your plants? I said, what? ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि प्लांट से बातें करो. और वो जोर से बोलते नहीं है, वो विस्पर करते हैं. उसको सुनना पड़ेगा और सुनने के लिए तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. और वो दिन है और आज का दिन है, मेरा एक भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन. इवन मेरे स्टूडेंट का कभी एक्सपेरिमेंट सही नहीं जाता है तो मैं उनके साथ जाती हूँ, उनके साथ सोइंग करती हूँ, उनसे बात उनको बातें करना बताती हूँ ताकि उन दिस इज समथिंग जो एक्सपेरिमेंटली या फैक्ट बेस्ड प्रूवन नहीं है, बट दिस एग्जिस्ट. ऑल दिस स्पिरिचुअल पावर्स लाइक वट वी टॉक अबाउट, लाइक इट्स नॉट वाई इट इज नॉट देयर, बिकॉज वी हैव नॉट रिसर्च्ड ऑन इट एंड वी हैव नॉट कलेक्टेड इनफ डाटा और एविडेंसेज टू प्रूव इट. एक छोटा बात यह है कि जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन कब डिस्कवर किया, ज्यादा नहीं पुराना है, 1902 या 1905, और 60 इयर्स में हम अपोलो मिशन में मून पे थे. क्योंकि उतने साल रिसर्च हुआ, वी रीच्ड, वी प्रोग्रेस. बट साइंस का एक कल्चर ऐसा स्टार्ट हुआ जिसमें हम जो हमें दिखता है हम बस उसको मानते हैं, जो नहीं दिखता है, जो महसूस होता है, हम उस पर कोई रिसर्च नहीं करते हैं. तो थैंक्स कि आज के जनरेशन में रिसर्च स्टार्ट हुआ है और मॉर्निंग सेशन में हमारे साइंटिस्ट थे जो इस पे बात कर रहे थे और इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जहां हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इट एग्जिस्ट. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है कि मैसूर में एक संस्था है जो प्राणिक हीलिंग पे काम करती है और उन्होंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट वगैरह को बहुत अच्छा हील किया था. उन्होंने एक इट्स सेरेंडिपिटी दैट वंस दे डिड द हीलिंग ऑन बीज सीड पे, उन्होंने एक तरह का हीलिंग किया और उसको उगा के देखा तो वो सीड बहुत अच्छा ग्रो हुए. धीरे धीरे लोगों में बात फैली और कुछ फार्मर्स भी जब उनका फसल अच्छा नहीं हो रहा था तो उनको बुलाने लगे और उन्होंने वहां भी वो ट्राई किया और वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ. तो वो उन्होंने हमारी संस्था को अप्रोच किया कि सी दिस इज समथिंग एग्जिस्ट बट वी डोंट नो व्हाट, कैन यू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि क्या है इसके पीछे. सेम टाइम पे इत्तेफाक हुआ कि यूएस की भी एक टेक्नोलॉजी आई जो प्लाज्मा वाटर्स करके, वो एक तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे जिसमें वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करके उसको सीड को ट्रीटमेंट करते थे और उनका भी ये कहना था कि उससे सीड बहुत अच्छा ग्रो होता है. अब जब दो एक्सपेरिमेंट थे और जब हम अपने हायर लेवल पे गए कि इसको लेना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के लिए मुझे बहुत मंजूरी नहीं मिल रही थी और तब मैंने यही बोला कि जस्ट वी आर नॉट रिसर्चिंग ऑन इट, वी आर नॉट एबल टू प्रूव. जो आज तक डिस्कवर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है. हो सकता है हम फ्यूचर में उसको डिस्कवर कर लें, पर उसको डिनाई नहीं कर सकते आप कि ये नहीं एग्जिस्ट करता है. तो इस तरह के चीजें एग्जिस्ट करती है और इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं. एवरीथिंग इज लिविंग. जब हम नेचर को भी लिविंग मानते हैं तो प्लांट्स क्यों नहीं लिविंग है? हम क्यों उस पर उसकी इस डायमेंशन में रिसर्च नहीं कर सकते? और जो कॉन्केव लेंस का दीदी एग्जाम्पल दे रही थी और सुबह डॉक्टर रघुनाथ ने भी बोला कि बहुत सारे साइंसेस पैरेलल चल रहे हैं, दे डोंट टॉक टू ईच अदर. और आज के जमाने में हमें इंटीग्रेट करना है ऑल द साइंस. क्यों हम आइसोलेशन में काम करें? क्यों हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ना यूज करें कि हाँ एग्रीकल्चर रिसर्च भी रहेगा, स्पिरिचुअल रिसर्च भी रहेगा एंड दिस इज परफेक्ट कॉन्फ्रेंस ऑन दैट एंड देन वी टुगेदर कम आउट. इंडिया इज द बेस्ट कंट्री वेयर यू हैव ऑल दिस अबंडेंस रिसोर्सेज फॉर स्पिरिचुअल रिसर्च एंड यू कैन एक्सप्लॉइट इट एंड बींग पाइनियर इन दैट यू कैन बी बेटर अडेप्टेड टू क्लाइमेट चेंज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड.
थैंक यू.
बहुत सुंदर आपने बताया, लेकिन मैं आप सबको एक और बात बताते हुए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में यौगिक खेती की जाती है। जैसे सुनीता बहन ने बताया कि सीड को हील करते हैं, ऐसे ही बहुत जगह फार्मर्स जो हैं हमारे राजयोग की प्रैक्टिस करके अपनी सीड को सकाश देकर बोते हैं और वहाँ पर हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे पाए गए हैं। आप सब जब कैंपस में नीचे जाएंगे तो हमारा तपोवन है जहाँ पर पूरी रूप से यौगिक खेती के द्वारा किया जाता है। वहाँ ना हम कोई भी प्रकार का पेस्टिसाइड और ये सब यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो नेचर से हमें चीजें मिलती हैं उन्हीं से हम उसको कीट रक्षक भी बनाते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं प्लांट्स को। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हमारी ही, जैसे उन्होंने कहा पौधों से बात करना है, तो हम क्या बात करें, हम उन्हें लव दे रहे हैं, हम उन्हें खुशी दे रहे हैं। तो एक मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक जगह पे प्लांट ग्रो नहीं हो रहे थे, वहाँ हमने म्यूजिक बजाया, उनके साथ बातें करनी शुरू की, डांस करना शुरू किया, देखा कुछ दिन में वो इतना अच्छा ग्रो किए और वो हमेशा लहराते रहते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वास्तव में जो ह्यूमन इनर नेचर है, हमारे इनेट वर्च्यूज हैं, वही एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो दो शब्द हम सुन रहे हैं, एक क्लाइमेट है एक एनवायरनमेंट है। तो क्लाइमेट सिर्फ एलिमेंट्स की बात करता है जबकि एनवायरनमेंट जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज के द्वारा और क्लाइमेट में तो आज जो कुछ भी हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको खाली कर दिया, एक्सप्लॉयट कर दिया, अब हम उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके हमें प्रकृति से हमने सब कुछ खींच लिया है तो हमें क्या देगी। उसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें उसको कुछ देना है। तो क्या हम ऐसी री इंजीनियरिंग कर सकते हैं सत्य प्रकाश भाई जी?
ओम शांति। पहले ये जो बात है री इंजीनियरिंग, उसका जो डेफिनेशन जो बाहर लौकिक में समझते हैं कि री इंजीनियरिंग माना री इन्वेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल देर इज ए प्रॉब्लम, दे टेक अप दैट प्रॉब्लम इन ए न्यू वे, न्यू वे इन द सेंस सम न्यू इंजीनियरिंग वे। आई गिव एन स्मॉल एग्जाम्पल, let us say there are number of diseases, number of illnesses going on in the society, and we are getting up with super specialty hospitals, multi specialty hospitals. Is it the remedy for this, or is there anything new to be added? That is most important. Reengineering doesn't mean that you just keep on increasing these things, so that the thing is you have to cut short at the seed itself, at the root itself. So in that context, what newness that you are bringing, so that you again bring it back to the normal state. Okay. If I mean, जो भी हम BK के philosophy में सब कुछ, it's like a paradigm shift, 180 degrees. For example, till now we are looking at outer people. I mean, बाह्य मुक्ता। अभी यहाँ पे आने के बाद हमको लगता है कि नहीं, अंतर्मुक्ता में आ जाओ। सो दिस इज ए न्यू शिफ्ट, कंप्लीट 180 डिग्री शिफ्ट। सिमिलरली लौकिक पीपल व्हाट दे से, यू ऑलवेज बी बिजी 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 बिजी, बट हियर वी आर बीइंग टॉट टू बी रिलैक्स्ड, काम, बिकॉज यू कैन हैव क्लियर थॉट्स, right, make right decisions. This is what is the new knowledge that we are being given. In fact, when I am talking about knowledge, I should also add something like a power to be given. It's not only just knowledge, but the power associated with it. So in the Brahma Kumaris only you will get knowledge as well as power, power through meditation. Elsewhere you may be getting knowledge, very good knowledge, no doubt in that, but how you implement that knowledge, for that you require power, for which this all this comes under the re-engineering processes. So without knowledge, power is of no use. Without power, knowledge is now. So both are contradictory, complement each other. So in that way, what I say that reengineering can be done provided if there is a complete shift in your inner nature. That is what we can do it. Amishant.
थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इस बात को एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट ओनली द री इंजीनियरिंग बट ब्रिंग बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेज. तो प्रकृति, जिस बाहरी प्रकृति की हम जनरली बात करते हैं, वो भी परोपकारी है. उसने आज तक हमें सब कुछ दिया लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. नाउ इट्स अ टाइम फॉर द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कि हम अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को जान के उन्हें पावर में कन्वर्ट करके आज इस प्रकृति को वापस उसकी नेचुरल स्टेट में ले आए. तो आज तक हम दो वर्ड सुनते थे, नेचर एंड नर्चर, और इनमें हमेशा साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये नेचर के कारण हो रहा है या नर्चर के कारण हो रहा है. नर्चर मीन्स आपके बायोलॉजिकल जेनेटिक डिफेक्ट्स और इफेक्ट जिसके कारण कुछ भी डिसऑर्डर होता है. लेकिन आज हमने आप सबसे बात करके जाना कि नेचर को नर्चरिंग की जरूरत है, उसको हमें सस्टेन करना है, और उसकी सस्टेनेंस के लिए जरूरी है सेल्फ एम्पावरमेंट, पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स, जिससे वो फेरोशियस की जगह फ्यूचरिस्टिक हो जाए. जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वो बहुत टेम्प्ररी फेज है उसका, और इस टेम्प्ररी फेज में ही यदि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे तो उसका फ्यूचर हमारे लिए ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव रहेगा. और जो चेंज है ये कांस्टेंट लॉ है. क्लाइमेट या एनवायरनमेंट एक दिन में नहीं बदलता, परंतु कांस्टेंट ये प्रोसेस है. तो यदि हम अभी आज से एक प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अब प्रकृति को कांस्टेंट लव देना है, कांस्टेंट हैप्पीनेस देनी है ना, तो क्या होगा, ये हमारे लिए गोल्डन वर्ल्ड को वापस ले आएगी. हमारी प्योरिटी इस प्रकृति को वापस वैसा ही प्योर बना देगी. और लेकिन यदि हमने इसका रिवर्स किया तो कौन है जो करना चाहेंगे रिवर्स? तो अभी सब डार्कनेस से क्या करेंगे, लाइट में आ गए हैं, तो लाइट में हम सब अपने वर्च्यूज को देख सकते हैं और उसकी ओर चलें. तो एक बहुत सुंदर कोटेशन है कि नेचर होल्ड्स द की टू आवर एस्थेटिक, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इवन स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, वो हमें प्राप्त हो जाएगा. तो इस विजन को सामने रखते हुए आज की वर्तमान परिस्थिति तो हमारे सामने है, परंतु वो भविष्य की प्रकृति कैसी होगी, आज इसका विजन और हमें उससे क्या बात करनी है वो बताने के लिए हमारे बीच में है भारती बहन. तो हम चलते हैं इस अंदर की यात्रा पर, अपने आप को भी जानें, अपनी प्रकृति से इस प्रकृति को कैसे स्वर्णिम दुनिया में लाएं, वो विजन हम अभी मेडिटेशन में करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. हमारा मेडिटेशन शुरू होने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि बात प्रकृति की हो रही है तो प्रकृति को हमेशा ही हम सभी मदर नेचर कहते हैं या प्रकृति माँ कहते हैं, तो माँ तो कभी क्रूर हो ही नहीं सकती है. तो एक बार हमारे आदरणीय गुलजार दादी हाई कॉन्शियसनेस के ऊपर क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कैसे हमारे एक एक थॉट किसी को हर्ट कर सकते हैं. उसके लिए दादी जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे. उन्होंने कहा देखो अभी बारिश का सीजन चालू है और बारिश की हम सबको जरूरत भी है. अगर हम तैयार हुए हैं कहीं बाहर जाने के लिए और बारिश आ जाती है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बारिश को भी अभी आना था, है ना, हमारी जरूरत है और सीजन भी है बारिश का. फिर जब ये थॉट क्रिएट करते हैं
तो ये थॉट क्रिएट होना भी प्रकृति को हर्ट करना है, ऐसे दादी जी ने हमें सिखाया था। तो हमारे एक एक थॉट, वर्ड्स, हमारे कर्मा प्रकृति को बहुत प्रभावित करते हैं। तो आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां हम ऐसे विचारों का अंदर सृजन करेंगे जो विचार हमारी प्रकृति माँ को सुखदायी बनाएंगे, और यही प्रकृति माँ हमें भी बहुत सुख देंगी। तो चलते हैं एक बहुत सुंदर यात्रा पर, अपने मन के सभी सकारात्मक विचारों को एकाग्र कर लेते हैं। हम आज प्रकृति माँ से मिलते हैं। प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी हुई, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इसी प्रकृति ने मुझे एक बहुत सुंदर देह दी, जिस देह के आधार पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं। इसलिए आज प्रकृति का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हे प्रकृति माँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप हमेशा मुझे देते रहते हैं। हम आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज एक बहुत बड़ा प्यार भरा प्रॉमिस भी करते हैं कि आज के बाद हम ऐसे ही विचारों का अपने मन में सृजन करेंगे जिससे आपको सुख पहुंचे। हम अपने मन की शुद्धता को बढ़ाकर आपको भी सदैव शुद्ध रखेंगे। आपका संतुलन बिगड़े ऐसा कोई भी कर्म हम नहीं करेंगे। जैसे ही हम अपने मन में ये विचार कर रहे हैं, प्रकृति माँ इन विचारों को स्वीकार कर रही है। और ये प्रकृति हमें हमेशा स्वस्थ रहने का वरदान दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है। ये प्रकृति और मेरे बीच में एक बहुत सुंदर संतुलन बन रहा है। इसी संतुलन के आधार पर प्रकृति और भी प्योर बनकर मुझे नई दुनिया में सुख देने वाली है। इसी प्रकृति माँ के लिए अब हम रोज थोड़ा समय निकालेंगे, जिस समय में हम प्रकृति को अपना आभार व्यक्त करेंगे, अपनी मन की बातें कहेंगे, हम सभी ऐसी प्रकृति जो सुखदाई थी सतयुगी दुनिया में, ऐसी प्रकृति का फिर अपने संकल्पों से आवाहन करते हैं। यही प्रकृति हमें फिर से वो स्वर्णिम दुनिया का आनंद दे सकती है। एक बार फिर से प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, फिर से अपने प्रॉमिस को पक्का करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
थैंक यू भारती बहन, आपने बहुत सुंदर थॉट्स, प्रकृति को ग्रैटिट्यूड और उसका एक सुंदर विजन हमें दिया। हम सबकी अंदर की, बाहर की और शरीर की प्रकृति ज़रूर ऐसी बनेगी, ऐसा विश्वास है। सब इसी को करेंगे। और अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे गेस्ट को मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे आज के प्रेजेंटेशन के लिए। और आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो सेशन है 6:30 to 7 बहुत सुंदर मेडिटेशन यहाँ पर रहेगा, और 7 to 8:30 तक पेपर प्रेजेंटेशन है। तो जिन भी भाई बहनों के लिए जो पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 7 से पहले हॉल में ज़रूर पहुँचें, और आप सब मेडिटेशन का लाभ लेने के लिए 6:30 तक यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो बहने सरोज दीदी को मेमेंटो और ईश्वरीय प्रसाद से अनुग्रहित कर रहे हैं। दीदी रवि भाई जी को मेमेंटो और प्रसाद देते हुए मैं सम्मान दे रही हूँ। डॉक्टर सुनीता चौधरी बहन जी को अभी मेमेंटो और प्रसाद से सम्मानित कर रहे हैं। और डॉक्टर वीवीएन सत्य सुरेश भाई जी आपको भी दीदी सम्मानित कर रहे हैं।